खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब खुदा के हुजूर झुके, खुदावन से उसकी हिकमत और दनाई मांगे कि खुदावन खुदा आज के वक्त को हम सब के लिए बाबरकत ठहराए, ताकि आज हम यहाँ से खुदावन के कलाम में से अपनी तरबियत, हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए उसकी ज़िंदगी बख्श बातों को, सच्चाइयों को, वादों को जान सके, याद कर सके। हालेलुया। खुदा बाप, तेरी हजूरी में आते हैं, अपने कलाम की रहनुमाई में हम सब की रहनुमाई कर। अपने कलाम को नाजल करके खुदा खुदा शिफा देता है। खुदा आज जितनी भी जिंदगियां यहाँ पर मौजूद हैं, बीमारी, मुश्किल, परेशानी और खुदा खुदा शक जैसी बीमारी में खुदा खुदा फंसे हैं, तो खुदावन तू हमारे शकों को दूर करने की कुदरत और ताकत रखता है। तू हमारी खुदा खुदा कमियों कमजोरियों को खुदा खुदा जोर में बदलता है। लश्करों के रब, आज आई हुई एक एक माँ के लिए, एक एक बहन के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए खुदावन तेरी हिकमत और दनाई मांगता हूँ, ताकि हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें हम सब की भलाई, रहनुमाई और हौसला अफजाई का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये ज़मीन, ये दुनिया आरजी है, लेकिन बहुत दफ़ा दुनिया में रहते हुए हमारा रवैया ऐसा हो जाता है, या दूसरों की तरफ देखते हैं कि लोग इस दुनिया को अपना अपनी घर समझते हैं और समझते हैं कि यही हमारा मकाम है, यही हमारी जगह है, इसलिए खाएं पिएं, ऐश करें और बात ख़त्म। आप और मैं इस सच से वाकिफ हैं कि ये दुनिया एक दिन नई बनाई जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह आएगा, सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, सब कुछ उसके हजूर से भागेगा और नया बनाया जाएगा, ताकि गुनाह और गुनाह की तस्वीर और हर तरह की सारी वो हालत जो आदम के गुनाह के बाद ज़मीन पर हुई ख़त्म हो जाए, यानी हर तरह की अबतरी, यानी कि बरगश्तगी, हर तरह की तारीकी, ख्वा वो रूहानी हो, ख्वा वो जिस्मानी हो, हर तरह की बीमारी, ख्वा वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, दूर की जाएगी। नया ज़मीन, नया आसमान होगा। इसलिए हम ईमानदारों के पास ये बहुत ही उम्दा उम्मीद है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि हम इफिसियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत पर फिर गौर करें। इस 30वीं आयत में हमें तीन मजमून मिलते हैं, खुदा का पाकरू, मखलसी के दिन के बारे में और फिर पाकरू की मोहर के बारे में। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो खुदा का बंदा कलीसिया को ये बात याद दिलाता है, कलीसिया को कहता है कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे खुदा का पाकरू रंजीदा हो सकता है। खुदा का पाकरू रंजीदा हो जाता है, झूठ, चोरी, कोई गंदी बात जिसमें चुगली, झूठी कसम, फरेब या ऐबजोई या बदगोई या किसी के लिए बददुआ मांगना या फिर दूसरी बातें जो खुदा की तरफ से नहीं है, वो खुदा के साथ खुश नहीं हो सकता। वो कह सकते हैं कि जो यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने नहीं बोया वो मैं नहीं काटता, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो मेरी तरफ है वो मेरा है, जो मेरे तरफ नहीं मेरे खिलाफ है। तो जब हम इन जाने में कोई गुनाह खुदा करते हैं तो खुदा खुदा जानता है हमारे दिलों की हालत को, लेकिन जब हम जानबूझकर करते हैं तो उसके बायस क्या होता है, रूह कुदस हमसे वक्ती तौर पर जुदा होता है, रफाकत टूट जाती है। और जब हम अपने हाथों को साफ करते हैं, अपने दिल को पाक करते हैं, यानी कि खुदावंद मैंने ये गुनाह तेरे हजूर किया तो हमें माफ करता है, हमें धोकर पाक और साफ करता है। तो पहली ये बात है इसमें कि रूह को रंजीदा ना करो और रूह को ना बुझाओ। ये दो गुनाह है जो ईमानदार करते हैं। बातों बातों में, सोचो सोचों में, ख्यालात में, या अपनी जिंदगी के रवैया से। दूसरी बात, मखलसी के दिन के लिए। मखलसी का दिन यानी वो दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आएगा और हमें इस दुनिया में गुनाह से, मौत से, बीमारी से, हर तरह की फिक्रों से क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। मखलसी का मतलब है आजादी, छुटकारा, रहाई, किसी को क्या कहते हैं कि कैद में से निकालना। और तीसरी बात आज हम गौर करेंगे, मोहर हुई। मोहर हुई के पाक रू की मोहर हम सब पर हुई है। उन सब पर पाक रू की मोहर कब होती है? क्या किसी को पता है कि पाक रू की मोहर हम पर कब लगती है? जाहिर हो। और इसके अलावा जी आए देखिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि कब पाक रू की मोहर हम पर लगती है। इफ़सियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत। इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाप उसकी 13वीं आयत कि पाक रू की मोहर कब किसी पर होती है। 13वीं आयत में लिखा है, और उसी में तुम भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। इस आयत में हम महीनों सीख सकते हैं लेकिन मुख्तसर तौर पर उसी में, किस में? खुदावंद यीशु मसीह में। तुमने यानी कि जो कोई भी है कलीसिया में, जब कलामे हक को सुना, क्या लिखा है? कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है और कलाम को कबूल करने से ही जिंदगी मिलती है। सो खुदा का बंदा पौलुस कहता है उन ईमानदारों को याद दिलाते हुए जो इफिसस में थे, आज हम कह सकते हैं कि आपको और मुझको याद दिलाता है जो आरखवाला में है, कि जब हमने यीशु मसीह के कलाम को सुना और उसके कलाम में से क्या सुना? खुशखबरी को। खुशखबरी क्या थी? कि तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह में खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक मिल सकता है। तुम खुदा के नजदीक जा सकते हो, तुम खुदा से गुफ्तगू कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो शर्त यह है, यीशु को अपना निजात दहिंदा मानने की जरूरत है। तो जब निजात की खुशखबरी को सुना और उस पर ईमान लाए, यीशु मसीह जब भी अपनी जमीनी जिंदगी में पैगाम देते थे उसमें से बहुत से लोग थे ईमान लाते थे और बहुत से बगैर ईमान लाए वापस चले जाते थे। बहुत से नाराज होते थे, बहुत से नुक्ताचीनी करते थे, बहुत से खुदावन के कलाम को रद्द कर देते थे। तो जो कोई ईमान लाता है उन पर क्या होता है? पाक मौदा रू की मोहर लगी, यानी कि पाक रू का जो वादा है, मौदा का जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में से कहा गया है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब यानी कि वादा। पाक रू का जो वादा है उसकी मोहर लगी। सो पाक रू की मोहर कब लगती है? जब हम यीशु को कबूल करते हैं, उसी दिन, उसी वक्त, उसी लहमा खुदा का पाक रू हमारे ऊपर यीशु की मोहर कर देता है। और मोहर करने से मतलब यही है। पुराने अहदनामा में अगर हम दानियल की किताब को देखते हैं, दानियल 12वें बाप में जब दानियल ने रोया देखी, खुदा का कलाम देखा, सुना, समझा, तो जो बातें लिखने को खुदा ने कहा कि इस पर मोहर कर दे और एक वक्त आएगा कि इसे खोला जाएगा। यूहन्ना का मकाशवा, मकाशवा की किताब, यूहन्ना आरफ का मकाशवा, जब उसे भी लिखा गया तो उसमें 6-7 मोहरों का, हमें 7 मोहरों का जिक्र मिलता है। उन मोहरों को कौन खोलने वाला है? सिर्फ एक, और वो कौन है? यीशु मसीह। सो मोहर लगी, जब हम पर मोहर होती है तो इसका मतलब है कि हमें मुकम्मल जमानत, मुकम्मल तौर पर हम उसमें महफूज हैं। जैसे गवर्नमेंट की अगर कोई डाकखाने में कागज भेजता है या खत या कोई ऐसी चीज भेजता है तो उस पर मोहर की जाती है या उसे क्या कहते हैं, सील लगाई जाती है। लगाई जाती है ना जी, कागज काले रंग की या लाल रंग की सील होती है जिस पर डाकखाने की स्टैंप लगी होती है कि कोई इसे खोल नहीं सकता सवाए उसके जिसके नाम पर है। अगर कोई खोलेगा तो वो क्या करेगा? हुक्म की अदूली करेगा, उसकी नाफरमानी करेगा। सो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हम सब पर मोहर हुई है, इस मोहर से मुराद, पहली बात, हम यीशु मसीह में अबदी तौर पर महफूज हैं। अबलीस शैतान की कोई भी तस्वीर हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकती, यीशु मसीह से जुदा नहीं कर सकती। और मैं यहां तक दिलेरी से कहूंगा, खुदा सच्चा है। हम सब यकीन करते हैं ना, खुदा सच्चा ना, वो वादों में सच्चा है, वो अपना वादा बदलता तो नहीं। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा खुद भी जब हम पर मोहर करता है वो इस बात को नहीं बदलेगा। खुदा खुद भी अपने अल्फाजों के खिलाफ नहीं जाएगा, इसीलिए खुदा की ये सिफत है कि वो सादिक है। सादकल कॉल, जिसका मतलब है जो कुछ वो कहता है दुरुस्त है, रासबाज है, सच है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। सो खुदा भी हमारी अबदी जमानत को, इस पाक रूह की मोहर को हमसे जुदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अपने मुखालफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरे साथ देखें, दूसरा तमोथियस, उसका 2 बाप उसकी 13वीं आयत, दूसरा तमोथियस 2 बाप उसकी 13वीं आयत। यहां पर खुदावंद खुदा की जात की वफादारी की क्या कहते हैं, वजाहत है। दूसरा तमोथियस 2 बाप उसकी 13 आयत, यहां पर यूं लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। मसीह के लिए अगर हम दुख सहेंगे तो हमारी दुखों के बदले में हमें क्या मिलेगा? विरासत मिलेगी। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो बादशाही करेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की बादशाही में हर ईमानदार यीशु मसीह के साथ बैठेगा नहीं, कुछ ईमानदार सिर्फ पंडाल में खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जमीन पर गुजारा, यीशु पर ईमान रखा और उसके बाद खत्म। ना कभी दुआ की, ना कभी शुक्रगुजारी की, ना कभी मसीह की जिंदगी के लिए उसकी गवाही दी। और क्या लिखा है? अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। इससे मुराद हरगिज नहीं कि हमें वो जिंदगी में दाखिल नहीं, नहीं, बल्कि ये उस तरफ इशारा है कि जो कोई उसके हुजूर हाजिर किया जाएगा उसमें से वो कह देगा कि मियाँ तेरा कोई हिस्सा मेरी बादशाही में नहीं बनता, इसलिए हमेशा की जिंदगी में आ, लेकिन कोई भी तुझे दर्जा नहीं मिलेगा। 14वीं आयत, यहां पर गौर करें, माजर चाहता हूं, 13वीं आयत, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। असी बेवफा हो सकते हैं, असी अपना जेन बदल सकते हैं, लेकिन खुदा अपना जेन नहीं बदलेगा। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। अगर खुदा हमारे बारे में कहे कि भाई लतीफ, भाई बेटा फैसल, बेटा लतीफ, तुझे हमेशा की जिंदगी दी, और साल बाद खुदा अपना जहन बदले, तो क्या खुदा अपनी जात के खिलाफ बात नहीं करेगा? खुदा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए खुदा अपने जात के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्चा है। जब हम पर पाक रूह की मोहर हुई तो इसकी जमानत ये है कि हम अबदी तौर तक महफूज हैं, कोई भी इसे बदल नहीं सकता, ना आसमान की कोई और कुव्वत, ना खुद खुदा और ना कोई और हस्ती। इतना वफादार खुदा हमारा है कि जो कुछ वो वादा हमसे करता है उसे बदलता नहीं। मिसाल के तौर पर तीतस के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत में भी ये वजाहत की गई है ईमानदारों के लिए। पालूस जब इन बातों को लिखता है तो इसके पीछे उसकी सोच क्या है कि ईमानदार परेशान हैं, ईमानदारों को कोई ना कोई झूठ बोल रहा है कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी हमेशा की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो पालूस रसूल उन फसादों को, उन झूठों को, उन फरेबों को जो कलीसियाओं में झूठे पैगंबर, झूठे नबी, झूठे रसूल, झूठे खुदा के पैरोकार करते थे, उनको वो हौसला देता है कि नहीं, मेरा तुम्हें यकीन करने की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा की जात है जिस पर तुम यकीन कर सकते हो। मैं तो बदल सकता हूँ, खुदा बदल नहीं सकता। सो तीतस के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाब दूसरी आयत में लिखा है, जरा गौर से सुने। उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया, जिसका वादा अजल से खुदा ने किया, वो झूठ नहीं बोल सकता। खुदा वादा करता है, मैं हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूंगा, तो इसका मतलब है कि उसने जो वादा इब्तदा ही से किया है उसे वो बदल नहीं सकता। अगर बदलेगा तो क्या हुआ, खुदा झूठा ठहरा, बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। पुराने अहदनामों में मूसा इस हद तक जाता है और गिनती की 23वें बाब में वो कहता है कि खुदा आदम जात नहीं के वो झूठ बोले। हम झूठ बोल सकते हैं, खुदा झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए रोमियो की किताब में भी ये लिखा है कि खुदा के वादे क्या हैं, ला तब्दील है। जब हम रोमियो नामा बाब देखते हैं, ये बातें, ये सच, इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये अहम है, क्योंकि आज बहुत दफा हमें भी ये मसला है। हमें भी बहुत दफा बहुत से लोगों से ये बात सुनने को मिलती है कि अगर आप शुक्रगुजारी खुदा के घर में नहीं देंगे तो आप दोजख में जाएंगे। कितने अफसोस की बात है, ये खुदा के खादमों के मुंह से अल्फाज निकलते हैं। अगर आप मुझे जाती तौर पर कोई हदिया नहीं देंगे तो आपका ये हशर हो जाएगा। ये क्या है, खुदा के कलाम में से नहीं बल्कि इंसानों की अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। 9वें बाप में क्या लिखा है, 11वें बाप में, 11वें बाप की 29वीं आयत है, यहां पर क्या लिखा है, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावे बे तब्दील है। खुदा की निजात क्या है, नेहमत है ना जी। अबदी महाफजत खुदा में क्या है, नेहमत है। सो खुदा में हमें, हम पर मोहर हुई है, इसलिए खुदा के तमाम वादे, उसकी नेहमतें, उसके बुलावे, जब वो कहता है बेटा तो उसका मतलब है बेटा। इसलिए खुदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये पहली बात है कि पाक रूह में हम पर जब मोहर हुई तो इसका मकसद यही है कि आप आज मर जाएं, मैं आज मर जाऊं, तो हम खुदावंद में हमेशा महफूज रहेंगे। कोई भी इसे बदल नहीं सकता, खुदा खुद भी अपने अल्फाजों, अपने कलाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई आपके पास आकर कहे तो उसे कहें कि बताओ एक जगह भी कहीं पर खुदा ने कहा हो कि मैं वादा करता हूं और फिर उस वादे को तोड़ता हूं। अगर ऐसा होगा तो याद रखें कि अबलीस का सबसे बड़ा अल्जाम खुदा पर यही था कि वो सादकुल कौल नहीं है, जिसका मतलब कि खुदा तो सच्चा नहीं है। शैतान ने ये बड़ा झूठ खुदा पर लगाया कि तू सच्चा नहीं। अगर खुदा झूठा होगा तो फिर अबलीस के अल्फाज सच्चे हो जाएंगे। इसलिए सच ये है कि खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। अबलीस झूठ बोलता है, उसे झूठ और झूठ का बाप कहा गया है। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी कहा नहीं, कहा कहीं भी नहीं कहा गया कि खुदा झूठा है, खुदा सच्चा है। आए हम खुदा के जोर झुकें और इस बात से इत्मीनान और तसल्ली पाएं कि कोई भी इस सच को बदल नहीं सकता, ना आसमान के फरिश्ते, ना मौत, ना पाताल, ना जमीन की कुवतें, ना कोई और कुवत, ना जिंदगी ना मौत। कादिर मुतलक खुदा, तेरी वफादारी को सलाम है। तेरी वफादारी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको इत्मीनान और तसल्ली दे, और खुदावंद फरेब देने वालों से हम बचे रहें। यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए।